सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 6 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने क्षूण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेष्यते। पंडित श्री आशादर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और इसमें अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 15 पर 15। 11 नंबर के श्लोक की यहाँ चर्चा चल रही थी, उसमें हमने देखा था कि जो न्याय से धन उपार्जन करता है एक बात, दूसरे में गुणों के गुरुजनों के और गुणों से महान गुरुओं को पूजने वाला, पूजने वाले का अर्थ आरती उतारने वाला ऐसा नहीं लेना, उसके गुणों का अनुराग है, आदर है, उसका आदर सत्कार करने वाला। तीसरी बात हमने देखी थी कि परनिंदार कठोरता आदि दोषों से दूर रहना चाहिए और आत्म प्रशंसा से। चौथी बात में यहाँ त्रिवर्ग का सेवन करने वाला, धर्म अर्थ काम, उसके बाद चल रही थी क्योंकि धर्म किसको कहा, तो सांसारिक अभ्युदय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति को धर्म कहा था, जिससे समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं उसको अर्थ कहा था, और जब सब इंद्रियों की तृप्ति होती है उसको काम कहा था। यहाँ हम 15 पेज पर आए तो कहते हैं उन्होंने पहले तो ऐसी बात की थी कि गृहस्थों को इन तीनों का ही सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि एक से दूसरे में बाधा न आवे, और तीनों ही अपने अपने समय पर अपने अपने योग्य प्रमाण में उसका सेवन होना चाहिए, ये बात उन्होंने बताई थी। अब यहाँ 15 नंबर पृष्ठ पर हम आते पहली लाइन के लास्ट में, किंतु यानी परंतु धर्म में बाधा डालकर अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज के गेहूं को भी खा डालने वाले किसान की तरह अधार्मिक पुरुष का भविष्य में अकल्याण ही होता है। क्या कहते हैं, जो बोने के लिए गेहूं अलग रखे हैं उसी को खा डालेगा तो खेत में क्या बोएगा और क्या पाएगा, तो भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा उसको, तो बीज से तो भविष्य में फसल उगेगी और उसको बहुत अधिक प्रमाण में अनाज मिलेगा, धान मिलेगा, परंतु कहते कि जो धर्म के लिए तो कुछ नहीं, धर्म में बाधा डालकर भी अर्थ और काम का सेवन करता है, अर्थ उपार्जन में 24 घंटे लगाता है और जो उपार्जन किया तो उसको भोगने में लगाता है, परंतु धर्म का विचार ही नहीं करता है, तो कहते हैं उसका अकल्याण ही होगा भविष्य में, क्योंकि जो है जैसे बीज खाने के लिए कितने दिन काम आएंगे, पूरी जिंदगी भर तो काम नहीं आएंगे, एक साल चलेगा उसका, ऐसे ही जो पूर्व का पुण्य कितने दिन काम आएगा, और वो भी पुण्य कंटिन्यूअस किसी का नहीं रहता, पुण्य और पाप का उदय भी पलटता रहता है, और पाप ही में अगर जीवन बिताएगा तो पूर्व का पुण्य भी पाप रूप टर्न हो जाता है, संक्रमित होते रहेगा, अति संकोच परिणाम करेगा, पाप रूप परिणाम करेगा, तो पूर्व का पुण्य का भी या तो अनुभाग घटेगा या तो पुण्य प्रकृति पाप रूप भी हो जाएगा।
ये जो बता रहे हैं धर्म में बाधा डालकर, यहाँ मूल बात तो ये है धर्म करना यानी क्या करना, पहले ये तो हम नक्की करें, पहले धर्म करना का अर्थ है अपने स्व का अपने स्व को पहचानना, स्व में लीन होना, और वो स्व में लीनता धारण करने के लिए पहले स्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यह तो स्वाध्याय के माध्यम से ही पता लग जाए, अगर हम किसी के उद्देश्य यानी आगम में जो बात लिखी है या कोई संवेदनशील जीव कुछ बता रहे हैं उसको ही नहीं समझे, उसको इस बारे में अपन क्या बोलते हैं टाइम ही नहीं निकाले, तो ये धर्म में बाधा ही है इनडायरेक्टली। एक्चुअली क्या है कि ये शास्त्र स्वाध्याय करके, क्यों आजकल तो वही तो मोस्ट पॉसिबल बात है, क्योंकि तो हमें कोई मुनिराज आके प्रवचन ने अपने को समझाए ऐसा उनको टाइम कहाँ है, वो अपने अपने स्वतः का कल्याण करना चाहेंगे क्या अन्य का है। तो आगम के माध्यम से अपने स्वरूप को जानकर फिर उसमें एकाग्रता करना ये धर्म है, और उस धर्म में बाधा डालने वाला क्या है उसका तो और कल्याण है। यानी धर्म में बाधा डालना यानी क्या है कि अपने स्वयं के, क्योंकि हम तो पर को बाधित तो नहीं कर सकते, हम बाधा तो अपने स्वयं को ही कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए, धर्म में बाधा डालकर अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें आ गई ना, भोग में अपना अपनी उम्र गंवाता है या पैसे कमाने में टाइम गंवाता है, तो कब अपना स्वरूप को जानेंगे।
मैंने धर्म का विचार ही नहीं करना,
देखो अभी आपको मैंने बहुत बार बताया है, आज एक बार बता दो, देवलाली में हम गए थे तब एक बहन हमको मिली थी, तो बहुत होशियार थे, और तो मैंने कहा कि अभी आजकल क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहना चालू कर दिया कि नहीं हमको अभी मैं संस्था चलाती हूँ, मैं वो ऐसा ऐसा सामाजिक कार्य करती हूँ, समाज का हमारे को बहुत बड़ा उपकार है। तो मैंने कहा भाई बहन, भाई बहन तू कब मनुष्य पर्याय में पैदा होगी, जब समाज नहीं होगा, क्यों समाज तो जब पैदा हो जाओ, मनुष्य पर्याय की बात कर तो समाज सामने खड़ा ही है, पहले ये तो नक्की कर कि तुम बढ़ता कुछ कर सकता है या नहीं। वो बहुत एक आधा घंटा तो उसमें लगता ही ऐसी बात, क्योंकि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपके उपकार है मेरे पर, लेकिन अभी भी जैसे कि थे वैसी है।
समाज के उपकार है, आप भी समझ में आएंगे तो
समझाने के लिए हमारे ऊपर उपकार, यानी ये मुझे ये कहना है कि हम यही समझते हैं कि हम पढ़ का कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ का करना चाहिए भाई, तेरा कब करेगा सबका करते करते, यही तो बात बता रहे हैं। किंतु धर्म में बाधा डालकर अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की कितनी बात बताते हैं, तो रात को खाना खाते हैं, हाँ बोले खा ले, क्या बात करते रात को खाते हैं, हाँ साहब सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलते हैं, रात को घर पहुंचते पहुंचते 10 बजते हैं, 8 बजे निकलते हैं, दोपहर का खाना क्या करते हैं, बोला अरे उसका तो टिफिन आता है, तो शाम को अभी टिफिन मंगा देगा ना, ये गुरुदेव कब बोले थे, आज से 30 साल पहले की बात है। और मैं कहता हूँ अपने यहाँ एक जीव स्वाध्याय में आने वाला गोरेगांव से आता था, आप जानते मानते उनको, वो आके 5 बजे 5:30 बजे जब भी उसका टाइम होगा, किंग सर्कल पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन पे बैठता था, उधर खाना खाता था, पानी पीता था, चलते यहाँ तक आता था। जैसे आपने बताया इच्छा हो वहां मार्ग होता है, जैसे बहुत लोग हैं भाई, ये एक वाक्य सब हिला डाले ऐसी बात, किंतु धर्म में बाधा डालकर अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो श्रावक को बता रहे, आप रुमी हो तो मुझे पता नहीं आगे,
क्योंकि पहले तो बताया था ना गृहस्थों को इन तीनों का ही सेवन एक दूसरे में बाधा न हुए इस तरह से करना चाहिए, एक दूसरे में इन तीनों में आपस में बाधा न हुए। अब यहाँ कहते हैं किंतु धर्म में बाधा डालकर आगे के दो नहीं सेवन करना चाहिए, यहाँ तक बात हुई। तीसरी लाइन, सुखी वही होता है जो पारलौकिक सुख का विरोध न करते हुए इस लोक में सुख भोगता है। हम लौकिक में भी भविष्य के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि जो कमाया उसी दिन गवाया, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे कोई जो बढ़िया काम करते हैं या कोई गरीब लोग है, एक दिन कमाया और जितना कमाया उसी दिन वो खर्चा भी कर रहा है, ज्यादा कमाएंगे तो दारू पिएंगे, खर्चा करेंगे, यानी वो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा पाते या बचाते नहीं, ऐसा विवेक नहीं है। तो यही बात कहते कि सुखी वही होता है जो पारलौकिक सुख का विरोध न करते हुए इस लोक में सुख भोगता है। इसी तरह धन कमाने की चिंता न करके जो धर्म और काम का सेवन करता है वह कर्जदार हो जाता है। अब कुछ धन नहीं कमाऊंगा, घर में बैठूंगा तो कौन खिलाएगा, घर में ही बात। इन्हें एक एक के बैलेंस होने चाहिए, बात यहां बता रहे हैं। अब कहते जो काम सेवन से विमुख होकर केवल धर्म और अर्थ का उपार्जन करता है उसका गार्हस्थ्य समाप्त हो जाता है, गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाता है। अतः गृहस्थ को त्रिवर्ग में बाधा डालना उचित नहीं है, किंतु यदि दैववश बाधा पड़े तो ऐसा कोई संयोग बने तो उत्तरोत्तर की बाधा में पूर्व पूर्व की बाधा रक्षणीय है। इसका अर्थ क्या, कैसा क्रम कैसा लगा है, धर्म अर्थ और काम, उत्तरोत्तर एंड नेक्स्ट नेक्स्ट और पूर्व पूर्व यानी उसके पहले वाले, तो पूर्व पूर्व की बाधा रक्षणीय है। उसका अर्थ क्या है, अर्थात काम के सामने धर्म और अर्थ में बाधा उपस्थित हो उसे पहले दूर करना चाहिए, यानी धर्म और अर्थ की रक्षा करके फिर वो काम की बात करें, क्योंकि धर्म और धन के रहने पर काम सुख सरलता से प्राप्त किया जाता है। इसमें पांचों इंद्रियों के जो भोग है, खाना है, पीना है, रहना है, ये सब जो जिसको हम कहते हैं सुखी गृहस्थ जीवन, वो पिता सकते हैं। अब काम और अर्थ दोनों के सामने धर्म की बाधा होने पर उसे पहले दूर करना चाहिए, क्योंकि अर्थ और काम का मूल धर्म है, यानी धर्म को छोड़कर बाकी नहीं करना है, पहले में पहले सबसे पहले धर्म की रक्षा, फिर अर्थ की और फिर काम। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। अभी तक हमने वो न्याय से उपार्जित धन वगैरह वगैरह देखी थी बात। अब कहते धर्म अर्थ और काम सेवन के योग्य पत्नी गांव वगैरह, ये जो बातें हमने 11 नंबर के पृष्ठ पर देखी थी उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यहाँ बताते हैं कि पत्नी, नगर या ग्राम और घर गृहस्थ धर्म के अनुकूल होने चाहिए। पिता, पितामह, पितामह समझते हैं? हाँ, पिता के पिता। और माता मह ने माता के पिता, नहीं समझे? नाना, नाना को माता मह कहते हैं। तो पिता, पितामह आदि पूर्व पुरुषों के वंश को कुल कहते हैं, यानी पिता का जो है उसको कुल कहते हैं और माता की तरफ जो है उसको पक्ष जो है माता का पक्ष उसको जाति कहते हैं। यहाँ तो कुल और शील की बात बता रहे, तो पूर्व पुरुषों के वंश को कुल कहते हैं और मध्य मांस आदि के त्याग को शील कहते हैं। गृहस्थ के लिए शील यही है ना, जिनका कुल और शील अपने समान हो उनके वंश की कन्या का अग्नि और देव आदि की साक्षी पूर्वक पाणी ग्रहण को विवाह कहते हैं। विवाह का फल शुद्ध पत्नी की प्राप्ति है, यदि पत्नी ठीक न हो तो जीवन नरक हो जाता है। योग्य पत्नी के मिलने से अच्छी संतान प्राप्त होती है, चित्त प्रसन्न रहता है, घर के कार्य सुंदर रीति से संपन्न होते हैं, कुलीनता और आचार विशुद्धि का संरक्षण होता है, देव, अतिथि और बंधु बांधवों के सत्कार में बाधा नहीं आती, जनक ने सीता को उपदेश देते हुए कहा था, मालूम है जनक कौन था? मारूमा जनक कौन था? पिता थे मालूम है पक्का। सीता को जानकी क्यों कहते हैं? जनक की पुत्री, इसलिए जानकी उसका नाम है, जनक उसके पिता का नाम है। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा था, स्वामी के घर आने पर स्त्री को खड़ा होना चाहिए। ये अन्य जो कुछ उन्होंने उदाहरण दिए ना, उसके आधार से ये सब बातें बताई उन्होंने। उसके भाषण में नम्रता होनी चाहिए, दृष्टि उसके चरणों पर होनी चाहिए, उसके बैठने पर स्वयं उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके सो जाने पर सोना चाहिए और उसके जागने से पहले शैया त्याग देना चाहिए। हे पुत्री, विद्वानों ने ये कुलवधू के धर्म कहे हैं तथा सास की सेवा, बंधुजनों में स्नेहशीलता, परिचारकों में वात्सल्य, सपत्नियों में सौहार्द, पति के मित्रों से विनयपूर्वक वचनालाप और पति के शत्रुओं से अप्रीति, ये सब पति को अपना बनाने की औषध है। और भी कहा है, जो सबसे पहले जागती है और समस्त परिवार के सो जाने पर सोती है, सबके भोजन करने पर स्वयं भोजन करती है, वह गृहिणी है। घर के व्यापार में गृहिणी, सूरत में वेश्या, गुरुजनों के बीच में वधु, परिजनों के मध्य में सखी और परिजनों के अभाव में मंत्री और सेवक के तुल्य जो हो वह गृहिणी है। इसके लिए उन्होंने कुछ ये संस्कृत के श्लोक उद्धृत किए। योग्य पत्नी के साथ स्थान और घर भी योग्य होना चाहिए। स्थान न हो तो एकदम खुला ही होना, न तो एकदम खुला होना चाहिए, न एकदम गुप्त ही होना चाहिए। अत्यंत खुले है कि ये खले हुए हैं, खुले खुले होना चाहिए। अत्यंत खुले स्थान में पास में किसी का वास न होने से चोरों आदि का भय रहता है। अत्यंत गुप्त होने पर एक तो मकान की अपनी शोभा नहीं रहती, चारों ओर से मकानों के जमघट में वह छुप जाता है। दूसरे आग वगैरह की दुर्घटना होने पर आने जाने में कठिनाई होती है। अत्यंत गुप्त है ना, जैसे कहीं बहुत गली गली में कहीं हो उसकी बात है, और अत्यंत खुला है ना, कहीं रिमोट प्लेस में अकेला हो तो उसकी बात है। तथा पड़ोसी शील संपन्न होने चाहिए। यदि पड़ोसी कुशील हो तो उनकी बातों के सुनने और उनकी चेष्टाओं के देखने से अपने भी गुणों की हानि होती है, अतः अच्छे पड़ोस में मकान होना आवश्यक है। आगे की बात, तथा गृहस्थ को निर्लज्ज नहीं होना चाहिए, लज्जाशील होना चाहिए। लज्जा गुणों की जननी है। लज्जाशील व्यक्ति प्राण भले ही छोड़ दे परंतु अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। आहार विहार युक्त होना चाहिए। यदि अजीर्ण हो, पहले किया भोजन पचा न हो तो नया भोजन नहीं करना चाहिए। आहार विहार युक्त का अर्थ होता है आहार योग्य होना चाहिए, युक्त नहीं योग्य होना चाहिए, विहार भी योग्य होना चाहिए। हाँ, आहार विहार युक्त यानी विहार युक्त आहार होना चाहिए, ऐसा नहीं, आहार और विहार युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ उन्होंने क्या लिखता है, युक्त आहार विहार, युक्त आहार शास्त्र विहित आहार विहार भोजन विचरणी यस्य, यानी शास्त्र में ऐसा लिखा है उस तरह से उसके आहार और विचरण यानी विहार होने चाहिए। पहले में क्या लिखा था उसमें 11 नंबर पर, शास्त्रानुसार खान पान और गमनागमन करने वाला, उसको युक्त आहार विहार का यानी योग्य पद्धति से। क्या योग्य होना चाहिए, यदि अजीर्ण हो, पहले किया भोजन पचा न हो तो नया भोजन नहीं करना चाहिए। अजीर्ण में भोजन करने पर अजीर्ण में वृद्धि होगी, अजीर्ण ने इंडाइजेशन, और अजीर्ण सब रोगों की जड़ है। अतः भूख लगने पर नित्य भोजन करना चाहिए। कितना? थोड़ा अल्प। कहाँ है जो मित भोजन करता है वह बहुत भोजन करता है। बिना भूख के अमृत भी खाने पर विष हो जाता है। मतलब भूख हो ना हो, टाइम हो गया और दूसरों के आग्रह पर तो खाना पड़ता है ना। आहार करने के समय का प्रविधान करते हुए कहा है, जब मलमूत्र का त्याग कर दिया हो, हृदय निर्मल हो। हृदय निर्मल में बहुत कुछ आकुलता, टेंशन करते करते बका बका खाना, वो उसके बाद निषेध कर दिया। वात पित्त कप अपने योग्य हो, भूख लगी हो, वायु का निस्सरण ठीक हो, अग्नि प्रज्वलित हो। अग्नि यानी कौन सी? वो गैस वाली नहीं, जठराग्नि। एसिडिटी नहीं, अग्नि प्रज्वलित है ना, भूख लगी जठराग्नि के। शरीर हल्का हो तब भोजन करना चाहिए, वही भोजन का काल माना गया है। अजीर्ण में भोजन नहीं करना चाहिए, अजीर्ण रोगों की जड़ है। मलवायु में दुर्गंध, मल का कड़ा होना यानी कॉन्स्टिपेशन। मलवायु दुर्गंध यानी दुर्गंध गैस पास होती है उसके लिए। शरीर में भारीपन, अरुचि और डकार में खटास, ये सब अजीर्ण के लक्षण है। अतः भूख लगने पर हित यानी हितकारक मित और सात्मीय भोजन करना चाहिए। सात्विक, सात्विक जो सुखकारक मित यानी थोड़ा मर्यादित। ये वचन के लिए हमेशा शब्द आता है, हित मित प्रिय वचन होना चाहिए। तो यहाँ आहार के लिए भी मित शब्द आया, वहां पर भी हितकारक होना चाहिए। अपने अनिष्टकारक भी आहार नहीं लेना योग्य। कहा है सर्वदा उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। भोजन की उचित मात्रा अग्नि को उद्दीप्त करती है। भोज्य हल्का हो या भारी हो, मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक। मात्रा यानी उसका प्रमाण, जितना सुखपूर्वक पच सके वही मात्रा है। प्रकृति विरुद्ध भी खान पान यदि सुखकारक हो तो उसे सात्म्य कहते हैं। अविधि पूर्वक भोजन, आधि व्याधि, या आधि क्या होता है, व्याधि क्या होती है? हाँ, मन का और शरीर का, और मरण कारक होता है, यानी जो अयोग्य भोजन मरण के लिए भी कारण रूप हो सकता है। कहा है अयुक्त भोजन, ये युक्त और अयुक्त की बात है ना, योग्य से युक्त शब्द तैयार हो। अयुक्त भोजन, अयोग्य भोजन व्याधि और मरण के लिए होता है। इसी तरह जो अविधि पूर्वक विहार करता है उसका अनिष्ट अवश्यम भावी होता है। आदि यानी मन के मानसिक, व्याधि यानी रोग शारीरिक, गृहस्थ को सदाचारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए, धूर्त और बदमाशों की नहीं। उनकी संगति से शील नष्ट हो जाता है। कहा है यदि उन्नति के मार्ग में जाना चाहते हो तो मिथ्या दृष्टियों, कुपथगामियों, कुपथ ने खोटे मार्ग में जाने वाले, मायावियों यानी कपटी, व्यसनियों और दुर्जनों की संगति छोड़कर उत्तम पुरुषों की संगति करो। गृहस्थ को प्राज्ञ होना चाहिए, अर्थात उसे अपने और दूसरों के द्रव्य क्षेत्र काल भावकृत सामर्थ्य और असामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, यानी वो विवेकी होना चाहिए। उसके ज्ञान पर ही सब कार्य सफल होते हैं, अन्यथा तो विफल होते हैं। कहा है यदि शक्ति के अनुसार व्यायाम किया जाए तो प्राणियों के अंगों की वृद्धि होती है और बल को विचारे बिना कार्य करने से विनाश हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं, तथा दीर्घदर्शी होना चाहिए, जिसको हम दूरदर्शी भी कहते हैं, यानी भविष्य का क्या उसका इफेक्ट हो सकता है इसका पहले विचार होना चाहिए। जो दीर्घ काल में होने वाले अर्थ अनर्थ का विचार करता है उसे दीर्घदर्शी कहते हैं। यह भी प्रज्ञा ही है, यानी उसको भी हम विवेकी ज्ञानी कहेंगे उसके संबंध में, क्योंकि प्रज्ञा को त्रिकालवर्ती अर्थगत कहा है। प्रज्ञानी ज्ञान त्रिकालवर्ती अर्थगत, यानी तीनों काल के वो पदार्थ उनको जानने वाला अर्थगत, अर्थों को अर्थों का पदार्थों को जानने वाला, उस सब पहुंचने वाले ने उसको जानने वाला। हम कहते हैं ना सर्वगत, वैसे अर्थगत यानी पदार्थों तक पहुंचने वाला, तथा जो वस्तु अवस्तु के कृत्य अकृत्य के अपने पराये के विशेष अंतर को जानता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेष यानी वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसमें उसका निर्णय हो सकता है, उसका विवेक होता है। जो पुरुष विशेषज्ञ नहीं है वह पशु से भिन्न नहीं। ये तो अभी यहाँ तो पारमार्थिक कोई बात नहीं, तो लौकिक की बात चल रही है। सब गृहस्थ कैसे होना चाहिए, अब इसको उद्देश्य और बाकी बातें तो आगे आएगी। अथवा जो आत्मा के ही गुण दोषों पर आरोहण करने रूप विशेष को जानता है वह विशेषज्ञ है। कहा है मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र का निरीक्षण करना चाहिए कि वह पशुओं के तुल्य है या सत्पुरुषों के तुल्य है। चरित्र यानी उसका आचरण, यह भी प्रज्ञा ही है। ये प्रज्ञा के लिए कितनी बातें लिखी उन्होंने, अतः प्रज्ञा कहना उचित है। कहा है यह फल है, यह क्रिया है, यह करण है, यह क्रम है, यह आनुषंगिक हानि लाभ है, मेरी यह दशा है, अमुक मेरा मित्र और अमुक मेरा शत्रु है, ये उचित देश काल है, ऐसा विचार बुद्धिमान ही करता है, दूसरा नहीं करता। ये प्रज्ञा ने उसको बुद्धिमान कहा है कि किसी चीज कर रहा है तो उसका फल क्या हो सकता है, उसकी क्रिया क्या क्या होनी चाहिए, उसके साधन क्या है, उसमें क्या क्रम है। आनुषंगिक यानी अनुषंग से आने वाली, उसके साथ साथ होने वाली हानि लाभ क्या हो सकता है, इन सब का विचार उसको होता है, वही बुद्धिमान है। तथा गृहस्थ को कृतज्ञ होना चाहिए। कल बात आई थी ना कृतघ्न और कृतज्ञ, दो शब्द आते हैं। अपने पर किसी के उपकार हुए उसका स्मरण करना वह कृतज्ञ। जैसे माता पिता ने हमारे लिए इतनी बातें की, बचपन से हमें बड़ा किया, हमें उचित शिक्षण दिया, तो हम क्या कहेंगे, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हम व्यक्त करें, ये कृतज्ञ हुआ। गृहस्थ को कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को भूलना या छिपाना नहीं चाहिए। इससे यह लाभ है कि उपकार करने वाले उसका बहुमान करते हैं। कृतघ्न, अभी कृतघ्न शब्द आया, कृतघ्न ने जो कि हाँ भूलता है, अनग्रेटफुल, और उल्टा तो उसके छोटा उसको दोष लगाए। कृतघ्न का तो उद्धार ही संभव नहीं है। कहा है ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्यपाई, चोर और व्रतभंग करने वाले का तो उद्धार संभव है, किंतु कृतघ्न का उद्धार संभव नहीं है। कृतघ्न अनग्रेटफुल, घ्न कृतज्ञ यानी कृत हुआ का स्मरण करने वाला। आज के समय में कृतज्ञ पुरुष दुर्लभ है, उनके जमाने में दुर्लभ थे, अभी अभी क्या हुआ होगा 800 वर्ष। कहा है जो उपकार करने का उत्साह रखते हैं वे तो कुछ है भी, किंतु जो उपकार को स्मरण रखते हैं उनसे यह पृथ्वी बांझ है, यानी दूसरे का उपकार करने वाले भी इस काल में मिलेंगे, परंतु उपकार को स्मरने वाले नहीं मिलेंगे। बांझेने ऐसे पुरुषों से पृथ्वी खाली है, ऐसे पुरुष नहीं हो रहे। जो कृतज्ञ होता है वह लोगों को प्रिय होता है। कहा है, यदि तुम पृथ्वी को अपने वश में करना चाहते हो तो कृतज्ञ बनो। जो सब गुणों से युक्त होते हुए भी कृतज्ञ न होता है, सब लोग उससे घृणा करते हैं। तथा गृहस्थ को वशी होना चाहिए, अर्थात इष्ट वस्तु में अनासक्ति के साथ, आसक्ति यानी उसकी लालसा, तीव्र इच्छा, इष्ट वस्तु में अनासक्ति के साथ तथा विरुद्ध वस्तु में भी प्रवृत्ति न करके स्पर्शन आदि इंद्रियों के विकार को रोकने वाला और अंतरंग छह शत्रुओं के निग्रह में तत्पर होना चाहिए। ये छह शत्रु कौन है उसको बताने दो। अयुक्ति से प्रयुक्त काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष, ये शिष्ट गृहस्थों के छह अंतरंग शत्रु हैं। यानी उन छह शत्रुओं के निग्रह में उसको तत्पर होना चाहिए। यानी वो इष्ट वस्तु को भोगेगा फिर भी अनासक्ति के साथ, और इनकी तीव्रता से नहीं, इनकी तीव्रता नहीं होनी चाहिए इन छह, उसको वशी कहा। वशी का अर्थ उन्होंने जितेंद्रिय कहा, मूल ग्यारहवें में पेश कर, यानी इंद्रियों को अपने वश में रखा। वो इंद्रियों के वश नहीं हो जाता, उसके कंट्रोल में होने चाहिए। भले कोई अच्छी लगती है चीज, फिर भी वो तो वो उसके कंट्रोल में, उस पर उसका निग्रह होना चाहिए। यानी जैसे वो, जैसे जीभ जो चाहती है, जीभ कुछ नहीं चाहती है, यही विकार से खाना चाहता है, तो बिना विवेक का उसको करता रहता है। तो इसे खान पान सभी चीजों के लिए ये बात लगानी।
जो शिष्ट गृहस्थों का लिखा है, मतलब वो वेल मैनर्ड,
हाँ वेल मैनर्ड, वेल बिहेव, हाँ शिष्ट है ने योग्य यानी अच्छे सदाचारी। वो शिष्ट शब्द मराठी में आता है ना, वो बहुत शिष्ट है, वो गर्विष्ट है, उसके अर्थ में नहीं लेना।
सज्जन।
अभी ये जो अयुक्ति से प्रयुक्त काम वगैरह जो है ना, अभी उनके अर्थ बताए। ये जो छह अंतरंग शत्रु बताए हैं उसको एक एक का यहाँ विचार करते हैं। दूसरे की विवाहित या अविवाहित स्त्री में दुर्भाव को काम कहते हैं, यानी उनके प्रति दुर्भाव ने खुशी लगता उसको काम कहा। अपने या दूसरे के अपाय का विचार न करके कोप करना क्रोध है। दान के योग्य को भी अपना धन न देना या अकारण पराया धन ग्रहण करना लोभ है। यानी लोभ के कारण वो तो योग्य को भी धन नहीं देता है और बिना कारण दूसरे का धन ग्रहण करता है, वो लोभ है। दुष्ट अभिप्राय को अथवा युक्त बात को भी ग्रहण न करना मान है। कुल, बल, ऐश्वर्य, रूप, विद्या आदि का अहंकार करना मद है। ये हमने देखे थे ना, आठ प्रकार के मद जो समय दृष्टि के नहीं पाए जाते हैं उसके, या तो उसको यह मद है। बिना कारण के दूसरों को दुखी करने से अथवा स्वयं जुआ, शिकार आदि अनर्थ का आश्रय लेने में मन का प्रमुदित होना हर्ष है। यानी अयोग्य चीजों में हर्षित होना, आनंदित रहना, वो हर्ष है। ये सब अपाय का कारण होने से त्याज्य है। तथा अपाय का कारण, हार्मफुल अपाय नहीं होना चाहिए। मराठी में ये शब्द अपाय, इससे अपाय होगा, हानि। तथा अभ्युदय और मोक्ष के हेतु धर्म की विधि को, ये धर्म किसका, कि जो मोक्ष का हेतु और उसके साथ साथ पुण्य भी बनता है, इसलिए अभ्युदय भी कहा। अभ्युदय ने उसको पुण्य के फल मिलते हैं, अच्छा कुल मिलता है, अच्छे पर्याय में जन्म होता है, उसके अभ्युदय का। अभ्युदय और मोक्ष के हेतु धर्म की विधि को, युक्ति और आगम से उसके स्थापना को सुनने वाला होना चाहिए, यानी धर्म की विधि को सुनने वाला चाहिए। कैसे, युक्ति और आगम से, न्यायपूर्वक, यानी उसको जो समझाया जाता है। कहा है, जो भव्य जीव मेरा कल्याण किसमें है ऐसा विचारता हुआ दुख से अत्यंत डरता है, सुख को चाहता है, दया गुणमय सुखकारी धर्म को सुनकर युक्ति और आगम से उसकी स्थिति का विचार करता है, धर्म कथा सुनता है, उसे ग्रहण करता है और आग्रह नहीं रखता, वह प्रशंसनीय है। क्या कहते हैं कि जो जीव ऐसा विचार करता है कि अपना कल्याण किसमें, मैं कौन हूं, मेरा कल्याण किसमें, बाकी तो पहले बताया ना, पशु और मनुष्य में क्या अंतर होगा, क्योंकि पशु में भी वो खाना पीना रहना, वो व्यवहार करना, वो तो चलता है, उसके भी काम क्रोध के परिणाम चल रहे हैं, और मनुष्य भी वैसा ही करता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु मैं कौन हूं, मेरा कल्याण किसमें है, और ये जो दुख से अत्यंत डरता है, कौन से दुख, बहुत बारिश आई, पीड़ा हुई पेट में, हाँ, जन्म मरण का दुख, खरा दुख तो अपने राग द्वेष का है। जीव दुखी है अपने राग द्वेष के कारण, दुखी अपने परिणामों से, दुखी संयोग ने जीव को आज तक दुखी बनाया ही नहीं है, उसके संयोग देख देख कर उसके जो राग द्वेष होते हैं वही उसके दुख का कारण है, उसी आकुलता उसी से होती है, यानी अपने मोह राग और द्वेष से वो दुखी है। तो कहते हैं दुख से अत्यंत डरता है और सुख को चाहता है, ये तो हर प्राणी चाहता है, परंतु सुख का सही उपाय नहीं करता। सुख किसमें से मिलेगा, अभी हमने धर्म अर्थ काम तीन बातें देखी, तो ऐसा मानता है कि काम से यानी इंद्रियों के जो विषय है उसको भोगने से मैं सुखी हूँ, उसका साधन क्या है, तो अर्थ कमाने से मैं सुखी होऊंगा, और इन दोनों का ही उपाय करता है। परंतु सच्चा सुखम प्राप्ति का उपाय तो मोक्ष के हेतु वो धर्म है, उसको तो इसने सुना नहीं, उस पर विचार नहीं किया, और बस देखा देखी सुख का कुछ भी उपाय करना चाहता है, परंतु वो सुखी होता नहीं। इसीलिए कहते कि जो दुख से अत्यंत डरता है, सुख को चाहता है, और दया गुण में सुखकारी धर्म को सुनकर, ये धर्म तो वही है ना जिससे वो सुख प्राप्त हो, और धर्म में ऐसा सुख, देखो ये पुण्य कमाया भी तो भी उसका तत्काल जिस समय पुण्य कर रहा है उस समय उसका फल नहीं मिलता, पुण्य कर्म बनने का भविष्य में कभी उसका फल मिलेगा, परंतु धर्म ऐसी रोकड़ा व्यवहार है, जिस समय धर्म की प्राप्ति उसी समय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, वो ऐसा नहीं कि आज धर्म करो और भविष्य में सुख पाओ, ऐसा बिल्कुल है नहीं। तो कहते सुखकारी धर्म को सुनकर युक्ति और आगम से उसकी स्थिति का विचार करता है, नहीं वो क्या है, क्या कैसा है, परीक्षा करता है, आगम से उसको निश्चित करता है। युक्ति का अर्थ होता है वो प्रमाण नए आदि से उसको जानना, उसको नियुक्ति कहते हैं। धर्म कथा सुनता है, धर्म कथा करते है, ये जो स्वाध्याय है ये सब उसे ग्रहण करते है, नहीं जानता है, ग्रहण करने का अर्थ है जानना यानी समझना बराबर अच्छी तरह से, और आग्रह नहीं रखता, यानी अन्य अपने जो पूर्व के मत है मताग्रह नहीं रखता,
युक्ति मतलब प्रमाण
नए आदि से जानना, उसको युक्ति कहते हैं। नित्य ने ट्रिक ऐसा नहीं लेना है। तथा ये तो हो गया ना बात, उपराधी वगैरह की बात, दयालु होना चाहिए। आगे दुखी का दुख दूर करने की इच्छा रूप दया का पालक होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मूल दया है। यानी कोई दुखी है तो उसको देख देख कर कोई मन में आनंद मानता है, अच्छा हुआ, अच्छी बात है ना, उसको दुख तो कहते वो तो इतने उसके कोमल परिणाम नहीं है कि धर्म का वहां प्रवेश हो सके। यानी वो सुनकर भी कुछ बात नहीं होगी। जैसे होंगे ना पत्थर पर कोई बीज डाल दिया तो क्या होगा, कुछ फल तो मिलेगा, उगेगा नहीं वो। ऐसे परिणाम कैसे, दयालु परिणाम होने चाहिए। हाँ,
प्रश्न था वो पर आग्रह नहीं रखता, वो किसका आग्रह नहीं रखता,
अपने पुराने मतों का, खोटे मतों का। हम तो ऐसा मानते थे, अभी धर्म की बात हमने ऐसी सुनी तो हम वही हठाग्रह रखे, नहीं नहीं हम दूसरे का कर सकते, हमने आज तक किया ना, हमने क्या सुना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम जो निश्चित है अपनी योग्यता से वही पर्याय प्रकट होगी। ऐसा कैसा हो सकता, मैं चाहूं वो कर दिखा सकता हूं, देखो मैं ये कर रहा हूं, ये क्या अपना हठाग्रह, पूर्व का आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है अपनी वो मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं होना, हट रखना, उस आग्रह ने हट।
धर्म कथा सुनता है उसे ग्रहण करता है, धर्म कथा में एक्सेप्ट करता है और आग्रह नहीं रहता है, और यानी एंड ऐसा अर्थ नहीं है,
और करते थे अन्य आग्रह
विपरीत, जो पहले उसके जो पहले वो मानता था, जो अभी जो सुना है उससे अलग है, उसका आग्रह
अन्य अपने हट से दूसरी बातें मान रखी थी उसी को हम कायम रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये दयालु होना चाहिए की बात हमने भी, क्योंकि धर्म का मूल दया है, यानी जिसके मन में दया नहीं अन्य प्राणियों के प्रति, हाँ तो वो तो कठोर हृदय वाला है, ये बात नहीं की होती। कहा है जैसे हमें अपने प्राण प्रिय है उसी तरह अन्य प्राणियों को भी है, यह मानकर मनुष्य को सब प्राणियों पर दया करना चाहिए तथा धर्म का सार सुनना चाहिए। ये 11 नंबर के श्लोक में जो जो बातें हैं ना उसकी बात हो रही है, और सुनकर उसे अवधारण करना चाहिए, अवधारण करने ने एक्सेप्ट करना, अंगीकार करना, आचरण में लाना। जो बात स्वयं अपने को अच्छी नहीं लगती वह दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। हमें कोई कठोर शब्द बोले तो अपने को अच्छी नहीं लगती, तो हम भी वही ख्याल रखेंगे दूसरों के प्रति बोलते समय सब में लगा नहीं। जो आजीविका के अभाव से व्याधि और शोक से पीड़ित है शक्ति के अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए। सहायता करना चाहिए, करनी चाहिए, दोनों बराबर। नहीं क्या क्या करना चाहिए इस अर्थ में उसको लेना। आजीविका के अभाव से यानी किसी को आमदनी नहीं, कुछ गरीब है, उसकी सहायता करना चाहिए। व्याधि यानी कोई रोग से पीड़ित है, कोई अन्य शोक से यानी कोई ऐसी आपत्तियां, कोई शोक की है तो शोक कर रहा है वह, तो कहते अपनी शक्ति के अनुसार उसकी सहायता करना चाहिए। और कीट चींटी आदि को भी अपने समान देखना चाहिए। क्या है समानता आप में और उसमें?
हाँ,
वो भी जीव है, हम भी जीव है, तो चैतन्य धर्म दोनों में समान है। तो अपने साधर्म्य है कि नहीं? साधर्म्य है कि नहीं, हमने पूछा। और कोई दूसरा होगा तो कोई ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो नहीं, वो साधर्म्य नहीं है। उनमें और हमारे में चैतन्य की समानता नहीं है। हम पूछ रहे थे, अरे वाह। ये एक ही नियम की रक्षा करना चाहता है, हाँ, और ये फिर आपस में झगड़ा करना चाहता है। अपकारी शत्रु का भी उपकार करना चाहिए, क्या कहते हैं? तो उसने मुझे इतना अपकार किया, मैं इतना बुरा किया, मैं उसका बदला लूंगा, ये भावना तो कहीं नहीं है। अपकारी का भी उपकार करना चाहिए। इत्यादि आचार भी दया में ही जानना, ये सब दया में आ जाते हैं। पर दया को धर्म का मूल कह दिया। ये लौकिक सदाचार की बात हो रही है। इतना भी जिसे नहीं है उसके वो स्व की दया वगैरह वो बातें उसको सुनने को भी नहीं मिलेगी, सुन के उसको समझेगा भी। तथा गृहस्थ को चोरी मद्यपान आदि पापों से डरते रहना चाहिए। पाप भीरु कहा था, वह शब्द आया था। ऐसे गृहस्थ को श्रावक धर्म अर्थात विकल्प चारित्र पालना चाहिए। कहा है चारित्र दो प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल्प चारित्र। समस्त परिग्रह से रहित अनगार मुनियों के सकल चारित्र होता है और परिग्रही गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। अब मंद बुद्धि शिष्य यानी हमारे जैसे मंद बुद्धि ने साधारण बुद्धि वाले सुखपूर्वक सरलता से स्मरण रख सके, इसलिए समस्त सागर धर्म का संग्रह एक श्लोक में कहते हैं। सागर धर्म क्या क्या है उसको बता रहे हैं। अभी पहले तो उसकी योग्यता पात्रता जो कुछ है वो बात हो गई। अब ये 12 नंबर का जो है सम्यक ममल ममला न्यन गुण शिक्षा व्रताणि मरणान्ते सल्लेखना च विधिना पूर्ण सागर धर्मोयम्। इन्हें पूर्ण सागर धर्म क्या है उसको एक श्लोक में बता दिया। देखो यहाँ पर शंका आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन, निरतिचार अनुव्रत गुणव्रत और शिक्षाव्रत, और मरण समय विधि पूर्वक संलेखना, यह पूर्ण सागर धर्म है। यह गृहस्थों का धर्म क्या है तो कहते हैं सब दोषों से रहित ऐसा सम्यक दर्शन, व्रतों का निरतिचार पालन और अंत में संलेखना पूर्वक मरण, मरण समय विधि पूर्वक संलेखना। अभी इसकी बात हम विशेषार्थ में देखेंगे विस्तार से। कुंदकुंदाचार्य ने चरित्त पाहुड़ में और उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में इतना ही पूर्ण सागर धर्म कहा है। देखो नीचे एक फुटनोट आकड़ा एक अकड़ा पंचे वणु वयायम गुण वयायम हवंति तह तिन्नी सिखा वय चत्तारिय संयम चरणम च सायारम। ये तो 5 अनुव्रत गुण वयाय हवंती है, 3 गुणव्रत शिक्षा वय चत्तारी ने 4 शिक्षा व्रत, ये सायारे ने सागर के संयम है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऊपर विशेषार्थ की दूसरी लाइन। इसी का विस्तार श्रावकाचारों में मिलता है। श्रावकाचार यानी श्रावक के जो आचार बनते हैं उसको श्रावकाचार, जैसे हमने पढ़े ना रत्नकरण श्रावकाचार, बहुत सारे श्रावकाचार। अंतर गुणव्रतों और शिक्षा व्रतों को भेदों में है, संख्या में अंतर नहीं। व्रतों की संख्या तो 12 है, ये ऐसा क्यों कहा? अंतर तो गुणव्रतों और शिक्षा व्रतों की संख्या में है, ये वेदों में है संख्या में नहीं। उसके जो भेद यहाँ अलग पद्धति से किए हैं, बस इतना ही भेद है, बाकी संख्या में तो सब 12 ही होते हैं टोटल। जैसे कुंदकुंद ने दिग्व्रत और देशव्रत को दिशि विधि सीमान नामक एक ही गुणव्रत माना है, यानी दिशा और विदिशाओं का माप। तत्वार्थ सूत्र में इसे दो व्रत माने। कुंदकुंद ने इस एक संख्या की कमी को संलेखना को शिक्षा व्रतों में सम्मिलित करके पूर्ण किया। इसका विशेष विवेचन आगे इन व्रतों के प्रसंग में किया जाएगा। ये सब बातें आने वाली है। जहां मरण के साथ ही जीवन का अंत हो उसे मरणांत या तद्भव मरण कहते हैं। यूं तो प्रति समय आयु कर्म के निषेकों की उदय पूर्वक निर्जरा होती है, उसे आवीची मरण कहते हैं। क्या कहा? प्रति समय मरण हो रहा है, आयु खलास हो रही ना, निकल जा रहे हैं, आयु के परमाणु छोड़कर जा रहे हैं। देखो यहाँ लिखा ना, यह मरण तो सभी प्राणियों में प्रतिक्षण हुआ करता है, उस मरण से प्रयोजन यहाँ नहीं, यानी उसकी बात यहाँ नहीं। ये प्रति समय मरण हो रहे, हम ऐसा भी देखते ना कि प्रति समय हम मरण की दिशा में, मरण के मुख में या यम के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जितनी आयु बांध के आए वो तो निश्चित है, उसमें तो बढ़ोतरी तो होने वाली ही नहीं है। इस भव में तो उसका घट भी सकती है कभी किसी की, परंतु बढ़ तो नहीं सकती है। तो कहते हर समय वो जितने समय पास हुए, जितने निकल गए, उतने तो घट गए ना। तो ऐसा मरण तो सभी प्राणियों के हो रहा है। अब यहाँ जो मरणांत कहा ना, यानी मरण के पूर्व में संलेखना, विधि पूर्वक संलेखना अंगीकार करना, सम्यक अर्थात लाभ आदि की अपेक्षा न करके लेखना, सत्य लेखना, सम्यक लेखना, संलेखना शब्द है ना, लाभ आदि की अपेक्षा न करके लेखना अर्थात बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा शरीर और कषायों को पुरुष करना संलेखना है। इसकी विधि 17वें अध्याय में कहेंगे। यद्यपि अनगार धर्मामृत के प्रारंभ में सम्यक दर्शन का वर्णन किया है, तथापि मोक्ष के कारणों में उसके प्रधान होने से तथा मूढ़ बुद्धियों के द्वारा उसका लक्षण ठीक न जानने से गृहस्थों को उसका बोध कराने के लिए पूर्वाचार्यों की सुक्तियों को विस्तार से कहते हैं। क्योंकि यह बात वहां पर भी हो चुक गई है, फिर भी यहाँ दोबारा बताएंगे, क्योंकि गृहस्थ धर्म में सबसे पहले में पहले सम्यक दर्शन। आचार्य अमृतचंद्र ने कहा है, जीव अजीव आदि तत्वार्थों का सदा ही विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान करना चाहिए। विपरीत अभिप्राय का दूसरा नाम मालूम? मिथ्या अभिप्राय, खोटी मान्यता, यानी सही श्रद्धान करना चाहिए। खोटी श्रद्धा छोड़कर सही श्रद्धान करना आवश्यक है। वह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है, यानी वो आत्मा का भाव है। अभी इसमें बहुत सारे उन्होंने उद्धरण दिए हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यही पढ़ते रहेंगे। जीव अजीव आदि तत्वों का उपदेश संक्षेप में इस प्रकार है। जीव उपादेय है, अजीव हेय है। ये उपादेय का अर्थ क्या है? ग्रहण करना। तो जीव को कहाँ से ग्रहण करेंगे हम? आश्रय लेना, यानी वो आश्रय करने योग्य उपादेय। जब हम संवर निजरा मोक्ष उपादेय कहते हैं, वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। परंतु मैं जीव तत्व हूँ और उसी में एकाग्र होना है, उसको आश्रय करना कहेंगे। और अजीव को हेय कहा। वैसे तो अजीव को गेय में हम गेय हेय उपादेय तीन करते हैं, तो उसमें अजीव को गेय में रखते हैं। जीव में हेय अजीव को लाने में कारण होने से आश्रय तत्व कहाँ है? जीव में अजीव को क्या लाया? कर्म का बंध हुआ ना, आश्रय से होता है, इसलिए वो इन्होंने उसके अलग तरीके से वर्णन किया। हेय अजीव के उपादान रूप से बंध कहाँ है? और हेय की हानि में हेतु होने से संवर और निर्जरा कहा? यानी अजीव के उन्होंने हेय कहा, परंतु वो जो हेय है उसकी हानि कैसे होगी? तो संवर और निजरा से। तथा समस्त हेय के छूट जाने से मोक्ष कहा। यानी यहाँ अजीव यानी वो तो कर्म की बात ली है मुख्यता से, और जीव अजीव के हेय और उपाधि इतनी दो ही बातें की है यहाँ पर। अजीव को ही हेय कह दिया उन्होंने। ये विशिष्ट अपेक्षावत उसकी अलग अलग कथन आता है। निदम जी ने यहाँ हेय कैसे कहा, अजीव हेय नहीं हो सकता, किस अपेक्षा से कहा, उसको ध्यान में रखना। अब यही रुकेंगे हम, बाकी चर्चा कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तकनम सदा।